हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेदांत को इस तरीके से चुप देखकर विहान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या हुआ वेदांत, आप क्या सोच रहे हैं? वेदांत ने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, टोमैटो, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ ये बात शेयर करके सही कर रहा हूँ या नहीं, पर मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारे सामने कोई बहाना बनाऊँ और तुमसे झूठ बोलूँ। तो अनंत भाई ने ये शादी लव मैरिज नहीं की है, वो लड़की उनकी पसंद की नहीं है, वो बस फ्लाइट में मिली थी और शायद वो लड़की किसी बड़ी मुसीबत में फंसी थी और उसका सल्यूशन था अनंत भाई से शादी करना। उस वक्त शायद अनंत भाई की जगह कोई और होता तो वो लड़की उससे शादी कर लेती। सो बस मैं इसी वजह से थका हुआ हूँ। हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे, वहाँ मैरिज रजिस्टर की, उसके बाद अस्पताल गए और पूरे टाइम मैं ही कार ड्राइव कर रहा था। ये सुनकर विहा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो तेज कदमों से चलकर वेदांत के पास आई और फिर उसके पास बैठते हुए धीरे से बोली, तो क्या उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं था उनके साथ? ऐसे अकेली लड़की तो ट्रैवल भी नहीं करती है। वेदांत ने विहा का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अब वो जमाना गया बच्चा जब लड़की अकेले ट्रैवल नहीं करती थी, और अब सारा मैटर तो तभी समझ आ सकता है जब वो खुद सामने से हमें कुछ बताएं, और उसकी कंडीशन देखकर लग नहीं रहा कि अभी वो सब कुछ बता पाएगी। फिर वेदांत ने विहा का चेहरा अपने हाथ में थामते हुए उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। अब विहा की गर्म सांसें वेदांत के होठों पर गिर गई थीं। वेदांत ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया टोमैटो। इतना बोलकर उसने विहा के होठों को अपने अंगूठे से छुआ तो विहा ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद करके कहा, वेदांत, ये कोई रोमांस करने का वक्त नहीं है। वेदांत ने विहा का माथा चूमते हुए कहा, अपनी बीवी से रोमांस करने के लिए वक्त देखने की जरूरत नहीं होती। विहा ने वेदांत का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं, चलिए बेड पर सो जाइए, मैं बाम लगाकर आपका सर दबा देती हूँ, फिर थोड़ा बेटर फील होगा। वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा प्यार आ रहा है अपने पति परमेश्वर पर, मुझे पता नहीं था मेरी टोमैटो किसी का ख्याल भी रख सकती है। विहा सोफे से उठी और फिर बेड साइड रखी ड्रॉअर से एक बाम की डिप्पी निकालते हुए बोली, अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता है कि आपकी टोमैटो क्या क्या कर सकती है। वेदांत सोफे से उठा और फिर बेड पर जाकर लेट गया। विहा भी उसके सिरहाने बैठकर उसके माथे पर हल्की सी बाम लगाकर उसके सर की मालिश कर रही थी। वेदांत को उसके मुलायम हाथ बहुत सुकून पहुंचा रहे थे। उसने विहा का दूसरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर की मालिश के बाद ही वेदांत को नींद आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर आज रूहान ना आने की वजह से अंजलि बहुत परेशान थी। उसके पास बैठी रिम ने अंजलि का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार मुझे लगता है तुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, रूहान कभी तुम्हारे पास वापस आएगा। अंजलि ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, रूहान अगर मेरा नहीं हुआ तो उसकी ज़िंदगी भी मैं सुकून से तो बिल्कुल नहीं कटने दूंगी। उसकी ये ज़िद सुनकर रिम ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने सुना है उसकी पत्नी मिडिल क्लास राजस्थानी फैमिली से है, जहाँ चीटिंग नाम की चीज़ कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है, और कुछ हो ना हो पर बंदा लॉयल चाहिए होता है। अंजलि को रिम की बात ज्यादा नहीं समझ आई। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुझे लगता है रूहान लॉयल नहीं है? वो पूरी तरह से लॉयल है, उसने मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया है। रिम ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, सिर्फ तेरी तरफ देखना छोड़ा है, उसकी फ्रेंड है ना मोहिनी, उसके साथ शॉपिंग पर जाता है, कभी हॉस्पिटल जाता है, कभी क्लब जाता है, कभी उन चार लोगों का अलग अड्डा है मिलने का, वहाँ जाता है। अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा, बात तो सही कर रही है, इन सब से हम उसकी फैमिली को ये तो यकीन दिला सकते हैं कि रूहान शादी के बाद भी किसी और लड़की के साथ घूम रहा था, पर मुझे नहीं लगता सिर्फ इतने से सबूत देखकर वो रूहान को गलत समझेंगे। उनकी बेटी जितनी समझदार है वो सारे गुण उसकी फैमिली से ही आए होंगे, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि उनकी फैमिली भी उतनी ही समझदार हो। रिम ने मुंह बनाते हुए कहा, तुझे नेगेटिव ही क्यों सोचना है अपने बारे में, जरूरी नहीं सारे कोइंसिडेंस एक साथ ही हो। तो अपनी और रूहान की फोटो उन्हें दिखाएगी कि ये लड़का पहले मेरे साथ था, उसके बाद इसकी शादी हुई और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड मोहिनी बन गई, सिंपल। और वो गाँव गांव के सीधे साधे लोग हैं, वो बहुत जल्दी तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। अब तुम बस उसकी फैमिली का पता लगाओ। अंजल ने डेविल स्माइल करते हुए रिम के कंधे थपथपाकर कहा, मेरे साथ रहकर तुम्हारा दिमाग बहुत चलने लगा है। चलो अब इस प्लान पर काम करते हैं, और जिस तरीके से ये फुल प्रूफ प्लान लग रहा है कि जरूर काम करेगा और रूहान की जिंदगी में जरूर भूकंप ले आएगा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए हाईफाई दिया और वापस अपने काम पर लग गईं। निमानी हाउस। अनंत के कमरे में जाते हुए राव्या पूरे कमरे को घूम घूम कर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ये इंस्टेंट पति उसे इतना खूबसूरत और आलीशान घर देने वाला था। अनंत ने अपनी जैकेट उतारकर बेड पर फेंकते हुए कहा, उस तरफ बाथरूम है। तुम्हारा सूटकेस तो एयरपोर्ट पर रह चुका है, किसी से बोलकर मंगवा दूंगा, और तुम्हें यहाँ किसी और के कपड़े पहनकर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं भाभी से कपड़े लेकर आता हूँ, ठीक है? अनंत ने विहा को देखा था, उसके कपड़े राव्या को नहीं आ सकते थे, इसलिए वो सीधा अनाही के कमरे की तरफ चला गया। राव्या जल्दी से फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। शावर लेते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ अपनी कजिन सिस्टर इमामी घूम रही थी। उस पल को याद करते हुए राव्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे जो शावर के पानी में घूम हो रहे थे। चार दिन पहले शाम 7 बजे राव्या अपने वर्क प्लेस से वापस अपने फ्लैट पर आ रही थी, जब रास्ते में उसे अपनी कजिन का कॉल आया। उसे देखकर राव्या की आंखें छोटी हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कॉल पिक किया तो सामने से इमामी ने पैनिक होते हुए कहा, रावी प्लीज जल्दी घर आ जा, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना बोलने के साथ ही इमामी बुरी तरह रोने लगी। उसे रोता हुआ सुनकर राव्या का दिल भी बुरी तरह घबरा उठा। उसने जल्दी से इमामी को शांत करवाते हुए कहा, तू पहले रोना बंद कर और अंकल को संभाल, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। इतना बोलकर इमामी ने कॉल कट किया और अपने सर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगी। अगले ही पल उसने हड़बड़ाहट में जल्दी से टैक्सी बुक की और अपने इमामी के फ्लैट पर पहुंच गई। वो लगभग दौड़ते हुए अंदर गई और अंदर का नज़ारा देखकर उसके कदम धीमे पड़ गए, क्योंकि उसके अंकल सही सलामत उसके सामने सोफे पर बैठे थे और सामने के सोफे पर बैठे आदमी से हंसते हुए बात कर रहे थे। दोनों लोगों के हाथ में सिगरेट थी। इमामी हाथों में कॉफी ट्रे लेकर आई थी। उसने जैसे ही राव्या को देखा, वो अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, सरप्राइज, पापा बिल्कुल ठीक है, अंदर आ जाओ रावी। राव्या का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने गुस्से में कहा, ये कैसा भद्दा मजाक था इमामी। इमामी ने कॉफी देने के बाद वो ट्रे सामने रखी टेबल पर रखी और तेज कदमों से चलकर राव्या के पास आई। उसने राव्या का हाथ पकड़ा और उसे हॉल में खींचकर ले जाते हुए बोली, देखिए मिस्टर चटवानी, ये है मेरी बहन, इसके बारे में हम लोगों ने आपके साथ बात की है। चटवानी ने ऊपर से नीचे तक राव्या को देखते हुए कहा, जितना आपने बताया था उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है ये लड़की।
राव्या आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरे बारे में बात हो रही है, पर मुझे पता भी नहीं है कि किस टॉपिक पर बात हुई है, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है?